तक न मना है, मार्ग कठिन है रुक न मना है, चलते रहना तेरी यात्रा में विश्राम ना है।
आंधी चले तो डर न मना है, तूफान उठे तो भी झुक न मना है, धूप जले तब डगमगाना मना है, कांटे चुभे तो सहम न मना है।
संकट की तपिश में पिघल न मना है, आशा के फूलों को मुरझा न मना है,
हवाएं कहे ठहर न मना है, धरती कहे भटक न मना है, बादल कहे बिखर न मना,
बुझना मना है, चलते रहना तेरी राह में आराम मना है, समय के प्रवाह में बहकना मना है, संसार के जाल में रमना मना है, दुनियावी उत्सवों को मनाना मना है, यथार्थ को भूले जाना मना है,
मायावी सुखों में चिपकना मना है, झूठे इंद्रजाल में फंसना मना है, तू है ज्वाला मिटना मना है, तू है हवा हम न मना है, तू है लहर पलट न मना है, तू है दिशा मुड़ न मना है,
चलते रहना तेरे पथ में विराम मना है।
ओम शांति। खेलते खेलते एक बच्चे की गेंद सागर में समा गई। वो बच्चा चिल्लाया और उसने रेत पर लिखा, समुद्र चोर है। एक दूसरी और एक दूसरे तट पर एक मछुआरा मछली पकड़ता है। बहुत मछलियां उसके हाथ में आई है आज, और वो लिखता है रेत पर, समुद्र मेरा पालनहार है। समुद्र के एक और तट पर एक युवा की मृत्यु हो गई है डूबकर। उसकी मां रो रही है, चिल्ला रही है, और वो रेत पर लिखती है, समुद्र हत्यारा है, हत्यारा मर्डरर। एक चौथे तट पर एक बूढ़ा व्यक्ति, एक गरीब समुद्र के किनारे चल रहा है, और अचानक उसकी नजर एक सीप पर पड़ती है जिसमें एक बहुमूल्य मोती है, और वो रेत पर लिखता है, समुद्र महादानी है। और फिर थोड़ी ही देर में एक विशाल लहर आती है और समुद्र पर जो कुछ लिखा है वो सब कुछ मिटा देती है। समुद्र को किसी से कोई लेना देना नहीं, किसने क्या लिखा है। वो अपनी शांति और अपना उफान वो लहर खुद तय करती है, वो अप्रभावित है। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरों के क्या ओपिनियंस है, इससे उस समुद्र को कोई लेना देना नहीं। वो अपनी मस्ती में है, वो अपनी ऊर्जा में है, वो अपने आनंद में है। वो समुद्र प्रतीक है स्थित प्रज्ञ योगी का, जो अप्रभावित रहता है। जीवन में अनंत विरोधाभास है, परिस्थितियां है, हलचल है, तूफान है, पर इन सभी तूफानों में जो स्थिर है वही योगी है। सभी स्थिर और एक सेकंड के लिए आंखें बंद और देखो कि मैं जीवन के इस महासमुद्र में एक अचल शिला हूं, स्थिर, तूफान आ रहे जा रहे, मैं अविचल हूं। आंखें बंद और अनुभव करो। स्थिर चित्त, स्थिर मन, स्थिर चेतना, इमोशनल स्टेबिलिटी, चाहे कुछ भी हो रहा है हमें स्थिर रहना है। और उसके लिए आप सबको एक काम दे रहे हैं, एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स अर्थात ऐसे कॉर्नर, ऐसे पॉइंट्स अपनी दिनचर्या में बना के रखने हैं कि जहां हम स्थिर हो जाए। जैसे ऑफिस के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट एंकर पॉइंट। आपने डिपार्टमेंट में पहुंचे, सेकंड एंकर पॉइंट। वापस आ रहे, थर्ड एंकर पॉइंट। किसी सेवा के लिए जा रहे, फर्स्ट एंकर पॉइंट। उस पॉइंट में अपने आप को वापस केंद्र पर लाना है, न्यूक्लियस सेंटर पर। जो मन भटकते रहता है, ये करेंगे, ये करेंगे, भाषण देंगे, कोर्स कराएंगे, लेक्चर, वर्कशॉप, सेमिनार, सेवा, ऑफिस, ड्यूटी, जॉब, इन सब से तुरंत वापस पॉइंट पे आ जाना, स्थिर हो जाना। एक छोटा सा संकल्प, मैं आत्मा हूं देह नहीं, जो हम सब जानते हैं, उस एक पॉइंट में स्थिर हो जाना। तो ऐसे कम से कम 7 से 8 एंकर पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। और वो करना कल सुबह अमृत वेले। यहां बैठे हुए वहां जाके क्या करना है इसकी प्लानिंग करके जाना है। यहां जो शांति का अनुभव हो रहा है, यहां जो स्थिरता का अनुभव हो रहा है, वो यहां का है। और यहां से जाने के बाद फिर उधर के संस्कार चालू हो जाएंगे। यहां कब तक है आप सब? परसों तक। यहां से जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाना है यहां से। वहां क्या करना है उसकी प्लानिंग, और यहां जब तक है तब तक पिछले 6 मास में जो कुछ हुआ उसका निरीक्षण, पीछे मुड़कर देखना है। हिंदी में शब्द है सिंहावलोकन, अर्थात जो सिंह होता है पीछे मुड़कर देखता है, रेट्रोस्पेक्शन, क्या हो रहा है जीवन में, क्या हो रहा है। यदि इस ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, अमृत वेले की यात्रा का क्या हो रहा है, मुरली की यात्रा का क्या हो रहा है, ब्रह्मचर्य की यात्रा का क्या हो रहा है, संबंधों की यात्रा का क्या हो रहा है, योग की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, सेवाओं की यात्रा, शरीर की बीमारियों की यात्रा। यहां बैठे बैठे ये सब कुछ करना है, और ऐसा अवसर शायद फिर कभी ना मिले। अभी जो संगठन बना है, ये जो सीन सामने है, ये शायद फिर कभी ना आए, क्योंकि संसार की हालत तेजी से बदल रही है। हो सकता है ये लास्ट विजिट टू द मधुवन है, इसके बाद मधुबन हम कभी आए ही ना, ये भी संभव है ना, हो सकता है ना। समय बहुत कम है, और यदि यह अवसर मिला है यहां आने का तो यहां से कुछ लेकर जाना है। लोग आते हैं, क्लास सुनते हैं, कराते हैं, नोट्स लिखते हैं, पर बाह्य मुक्ता में रहते हैं, सेंटरों पर जाते हैं, संधि पर बैठकर अनुभव सुनाते हैं, और उन सब का प्रभाव 1 मास 2 मास बस फिर जैसे थे, एज इट इज। यदि यहां से कुछ ले जाना है तो एटलीस्ट 3 नियमों का पालन करना है। रूल नंबर 1, मोबाइल स्विच्ड ऑफ। स्विच्ड ऑफ मीन्स स्विच्ड ऑफ, हाथ ही नहीं लगाना उसको जब तक यहां है। यदि कुछ गहरा अनुभव करना है, कोई डेप्थ, उसको बाजू कर दो जब तक यहां है। अगर अभी तक नहीं किया है तो इस क्लास के बाद जिसको फोन करना है एक बार कर दो, और फिर जैसे भट्टी खत्म होगी उसी दिन इसको ऑन करना, जैसे उस संसार से कट ऑफ। रूल नंबर 2, मौन। आर्य मौन, संपूर्ण मौन, क्योंकि यहां हम आए हैं पिकनिक करने नहीं आए हैं, गहरी तपस्या करने आए हैं। यह तपोभूमि है, यहां के प्रकंपनों में ईश्वरीय सुगंध है। अगर यहां आकर भी सुबह से लेकर रात तक केवल बातें और बातें और बातें चल रही है तो यहां से केवल ऊपर ऊपर का ले जाएंगे। बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा अनुभव था, ये बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, परंतु इससे परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन इतना सस्ता नहीं है, परिवर्तन त्याग मांगता है, इसलिए चुप, एब्सोल्यूट साइलेंस। उस साइलेंस की आदत डालनी है, अगर यहां आकर भी योग में आते हुए बातें, योग से जाने के बाद बातें, भोजन करते हुए बातें, पूरी दिनचर्या बातों में जा रही है, तो ये केवल एक एंटरटेनमेंट होगा बस। इसका प्रभाव 10-12 दिन चलेगा, नॉट मोर देन दैट। बिना मौन के और बिना एकांत के अध्यात्म अधूरा है। यदि गहरी अनुभूति चाहिए तो वो शब्दों से परे ही प्राप्त होगी। वो शब्दातीत है, वर्णनातीत है। अगर यहां पर भी आकर वही सब कर रहे जो वहां कर रहे थे, यहां क्यों आए? चुप। यदि हम नहीं रह सकते तो कम से कम जो मौन में है उसका मौन तो डिस्टर्ब ना करे। रूल नंबर 3, लॉक्ड अप, लॉकडाउन। इस कैंपस में स्वयं को कैद कर दो। हमारी दुनिया होगी अपना कमरा, डाइनिंग, मुरली क्लास, मेडिटेशन हॉल, क्लासरूम, बस। और यहां जो प्राकृतिक सौंदर्य है, मौन है, एकांत है, प्रकृति है, एकांत में बैठो और सोचो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां खड़ा हूं, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, अमृत वेले में क्या हो रहा है, ब्रह्मचर्य में क्या हो रहा है, ज्ञान में क्या हो रहा है, योग में, धारणा में, सेवाओं में, संबंधों में। थिंक। यहां केवल क्लासेस सुनने नहीं आए हैं। शिविर में भले पहली बार आए हैं, पर यहां से कुछ ले जाना है, कुछ ऐसा ले जाना है जो जीवन को ही बदल दे। समथिंग डीप। हर एक ने अपने जीवन की यात्रा देखी है, उसको एक बार फिर से देखेंगे। सभी स्थिर, कुछ समय के लिए आंखें बंद और याद करो, मैं कहां हूं। वहां से चालू करो जहां से जीवन शुरू हुआ था, वो घर जहां हमने जन्म लिया था, वो माँ बाप, भाई बहन, स्कूल, कॉलेज, सारे जीवन की यात्रा। और आगे और आगे सोचते जाओ, देखते जाओ, स्कूल कैसा था, कॉलेज कैसा था, वो गांव, वो मित्र, बचपन, क्या उमंगे थी, कैसा जीवन था। और आगे बिजनेस, जॉब, विवाह, संसार, और आगे जीवन की परिस्थितियां, समस्याएं, और आगे। और वर्तमान में देखो अपने घर को, ऑफिस को, और जब से यहां आए इन 2-3 दिनों में क्या क्या देखा, एक मिनट के लिए अवलोकन करो, जस्ट ऑब्जर्व। ओम शांति। जब से यहां आए तब से अब तक हर एक ने एक अनुभव किया होगा। कौन सा अनुभव? कि जो मन में बोझ था वो कम हो गया है। एक स्ट्रेस, एक टेंशन किसी ने खींच लिया। सबने अनुभव किया है ना? क्यों किया और क्यों हुआ? ऑटोमेटिक हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया, अपने आप हो गया। क्योंकि हर व्यक्ति के वाइब्रेशंस होते हैं, हर स्थान के वाइब्रेशंस होते हैं। ये जो वाइब्रेशंस है, हम जैसे उस फील्ड में जाते हैं अपने आप हमारे विचार बदलते हैं, इमोशंस बदलने लगते हैं। इसलिए जितने भी तीर्थ स्थान हैं संसार में, वहां जाते ही क्या होता है, विचार अपने आप उठने लगते हैं ऊपर। इसलिए ऐसे स्थानों पर बार 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 आते रहना। यहां पर फर्स्ट टाइम आने वाले कौन कौन है? ऐसा किसको लगा कि हम यहां कई बार आए हैं? आए फर्स्ट टाइम है पर लग रहा है जैसे कई बार आए हैं। लग रहा है क्यों? इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? डेजा वू। ऐसे नए स्थानों पर व्यक्ति जाता है पर ऐसा अनुभव होता है जैसे हम यहां पहले भी आए हैं। क्यों? क्योंकि अंतर मन में स्मृतियां है, वो इमर्ज होती है। कुछ लोगों को देखकर ऐसा अनुभव होता है कि इनको हमने देखा है। क्यों? कई लोगों को देखकर ऐसा अनुभव होता है कि हमारे मित्र हैं, एकदम तार मिल गए। और कुछ लोग केवल बाजू में आके बैठते हैं, कुछ भी बात नहीं किया फिर भी ऐसा लगता है इनसे दूर जाओ। क्यों? निगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं। आत्माओं में जन्म जन्म से, जन्म जन्म से किस किस के साथ रही है उस अनुसार ये सब होते रहता है। तो यहां आए हैं तो यहां से कुछ लेकर जाना है। और डीपेस्ट एक्सपीरियंसेस जो है, चाहे व्यक्ति अध्यात्म में हो या ना हो, चाहे रिलीजियस हो या ना हो, इवन साइंटिस्ट, जब भी कोई साइंटिस्ट कोई रिसर्च करता है तो क्या करता है? अंडरग्राउंड चले जाता है। देखा होगा ना, दुनिया का उनको कुछ खबर नहीं रहती है, अपने आप सब भूल जाते हैं और कुछ तो रिसर्च लेकर वो आते हैं, कुछ तो डीप, कुछ तो बहुत गहरा। वो सारे रिसर्च किस में होते हैं? साइलेंस में। ऐसी बहुत सी साइलेंस रिट्रीट्स होती है, ये वो लोग करते हैं जिनका स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। डार्क रिट्रीट्स होती है, डार्क रिट्रीट सुना है? अंधेरे में रहते हैं 9 दिन तक एक ही घर में। एक घर लिया जाता है, एक कोऑर्डिनेटर होता है और उनको नए अनुभव होते हैं। जहां जहां साइलेंस है, जहां जहां सॉलिट्यूड है, एकांत है और मौन है, कुछ तो नया मिलता है। हमारे जीवन के जो भी समस्याएं हैं, हम वहीं गोल गोल रह के उसको सुलझाने की कोशिश करते। एक मेथड है उस डायमेंशन से बाहर निकलकर ही उसके प्रति हमें एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, एक नई जगह जाकर। इसलिए चेंज ऑफ प्लेस इज अ थेरेपी। आप अभी यहां आए हैं, यहां बैठकर उस जीवन में क्या हो रहा है वो अच्छे से देख सकते हैं। रिश्तों में क्या हो रहा है, मेडिटेशन कैसे कर रहे या नहीं कर रहे, जो भी, एवरीथिंग ये भूल ही जाओ, स्पिरिचुअलिटी नॉन स्पिरिचुअलिटी, जीवन में क्या क्या हो रहा है वो यहां बैठ के हम अच्छे से देख सकते हैं। तो जब तक यहां है तब तक कुछ यहां से लेके जाना है। एक संकल्प कर लो कि मुझे यहां से कुछ तो लेके जाना है, कुछ तो ऐसा
जो जीवन में मिसिंग लिंक है, पश्चिम देश का एक महान लेखक है लियो टॉल्स्टॉय, रशिया का, उसने एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है। एक व्यक्ति है, साइबेरिया में रहता है, गरीब किसान है, वो सुनता है कि एक दूसरी जगह है वहां पर जमीन फ्री में मिल रही है। उसे इतनी उत्सुकता होती है कि मैं जाऊं और जमीन खरीदूं, वहां की ले लूं, फ्री में मिल रही है। यहां का सब कुछ बेच देता है और लंबी यात्रा करके वहां पहुंचता है, पूछता है लोगों को, क्या यहां जमीन वास्तव में फ्री में मिलती है? वो कहते हैं हाँ, शर्त एक ही है कि सुबह से आप दौड़ना चालू करो, जितना दौड़ोगे वो सारी जमीन तुम्हारी, परंतु शाम तक वापस पहुंचना है। वो रात भर सो नहीं सकता है, सुबह पहुंचता है, सारे गांव वाले वहां खड़े हैं और वो उस लकीर से भागना चालू करता है। अपने साथ भोजन और पानी भी रखा हुआ है और शर्त एक ही है कि सूर्यास्त से पहले वापस पहुंचना है। जितना वो भागेगा वो सारी जमीन उसकी। ही स्टार्ट्स रनिंग, वो भागने लगता है, भागने लगता है, भागने लगता है। उसको प्यास लगती है, सोचता है पानी पीऊं, पर फिर सोचता है अगर पानी पीऊंगा तो जमीन थोड़ी कम हो जाएगी, रुकना पड़ेगा। सोचता है बाद में देखूंगा पानी का, पहले जमीन। फिर भागता है, फिर भागता है, फिर उसे थोड़ी भूख लगती है, सोचता है भूख लगूंगा, रुकना पड़ेगा तो जमीन कम हो जाएगी। होता नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। भागता है, भागता है, भागता है, फिर प्यास लगती है, कहता है रुकना ही नहीं है, पानी फेंक देता है। भूख और लगती है, भोजन भी फेंक देता है, भागते जाता है। दोपहर हो जाती है, उसे लगता है वापस लौटना चाहिए क्योंकि शाम तक लौटना है, पर सामने की जो जमीन है बहुत ज्यादा हरी हरी है और अच्छी लग रही है, और थोड़ा भागता है। फिर लगता है कि अभी लौटूं, 2 बज गए, परंतु सामने की जमीन कैसी है, फर्टाइल, ग्रीन, और भागता है, और भागता है, और भागते भागते 4 बज जाते। फिर उसको लगता है अब तो मुझे वापस लौटना ही चाहिए, और तब फिर वापस लौटने लगता है, थका, भागता है, बस अब सूर्यास्त तो हो रहा है, पहुंच जाता है, गांव के लोग वहां खड़े हैं, बुला रहे, आओ आओ आओ, और वो भाग रहा है, भागते 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 वो लकीर से बस थोड़ी देर पहले धड़ाम से गिरता है और मर जाता है। गांव के लोग कहते हैं एक पागल आज फिर से मर गया। क्या हम भी ऐसा ही नहीं भाग रहे? भाग ही रहे, क्या चाहिए और क्यों भाग रहे? ये नियति ने अवसर दिया है। कौन सा अवसर? यहां आकर रुकने का, अपने आप से बातें करने का, संसार को थोड़ी देर के लिए बाजू में रखकर शांति से बैठो और सोचो, मैं कहां भाग रहा हूं, किस ओर और क्यों? बड़े शहरों में अगर आप गए होंगे, मुंबई कोई गया है? देखा है वहां पे कैसे भागते हैं लोग, दादर। वहां किसी को रोको और पूछो क्यों भाग रहे हो, क्या कहता है? सब भाग रहे इसलिए मैं भी भाग रहा हूं। भाग ही रहे। कुछ मिलेगा, कुछ पाए मिलेगा, परंतु कुछ नहीं मिलता है। एक साइंटिस्ट ने लिखा है, आई स्पेंट माई लाइफ इन रिसर्चिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, पूरा जीवन मैंने संशोधन किया, रिसर्च किया, बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ माई लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स, जैसे जीवन उंगलियों से फिसल गया, चला गया, मैं खो गया, जो करना था वो किया ही नहीं। ये समझो, यहां आपको जो आने का अवसर मिला है ये कोई डिवाइन प्लानिंग है बहुत बड़ी, बिना भाग्य के यहां कोई आ नहीं सकता। एक प्रश्न हम हमेशा पूछते हैं जो भी नए होते हैं, यहां आपको किसने लाया? किसने लाया? बाबा को छोड़ो, दूसरा बताओ, और किसने लाया? दीदी ने लाया, और किसने लाया? सेंटर दीदी एक, और बाबा दो, और भाग्य 3, और यूनिवर्स, ओके, और संकल्पों ने, और ऐसे कितने होंगे, ऐसे हर ग्रुप में होते हैं कि किसी और की टिकट में आ जाते हैं, और जिसका बिल्कुल फिक्स्ड होता है आना, वो टाइम पर नहीं आता। यहां आना कोई अचानक की घटना नहीं है। यहां किसने लाया है? जो हमारे जन्म जन्म के पुण्य है, उस पुण्य ने ढकेल ढकेल कर यहां पहुंचाया है। बिना पुण्य के इस भूमि पर कोई आ नहीं सकता है। इसी ज्ञान सरोवर में एक बार संत सम्मेलन हुआ था। वहां पर जो महामंडलेश्वर आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे मठ में यदि 500 लोगों को बुलाया जाए और उसमें 10 लोग एक्स्ट्रा आ जाए तो हलचल हो जाती है। यहां कितने आते हैं? और नीचे देखा होगा शांतिवन में, आते ही आते, कब बन रहा है, क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है पता ही नहीं चलता है। देखा होगा ना, चुपचाप, कोई डिस्टर्बेंस दिख रहा है, कोई आवाज, कोई हलचल? इससे इतना तो पक्का है कि ये जो कुछ हो रहा है ये मनुष्य का काम नहीं है, ये ईश्वरीय सत्ता है। यहां पर कोई ईश्वरीय वर्क एनर्जी काम कर रही है। उस महामंडलेश्वर जी ने कहा था, उन महामंडलेश्वर जी ने, कि यहां की हवाओं में परमात्म प्रेम की तरंगे है। क्या है यहां पर? तरंगे है, वेव्स एंड वेवलेट्स ऑफ डिवाइन लव। इसलिए जब तक यहां है तब तक अंदर जाना है, अपने आप के अंदर, कि मुझे करना क्या है, मैं किस लिए हूं, ये सब क्या है। उत्सुकता जागनी चाहिए, उत्कंठा, ये क्या है, ये कौन है, ये क्यों है। यहां पे आप किचन में जाओ, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाओ, कुछ माताएं मिलेगी वहां, कुछ सेवाधारी भाई मिलेंगे। उनमें से कई लोग अनपढ़ है, उनको पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, ऐसे कई मिलेंगे। उनको जाके पूछो कि तुम यहां क्यों आए। वो जो उत्तर देंगे, यहां बैठ के जितने भी भाषण है उससे भी सबसे बेस्ट भाषण वो होगा, क्योंकि वो भाषण में क्या होगा, अनुभव, उस व्यक्ति का अनुभव जुड़ा है उसमें। तो आज के इस सत्र में हम कुछ बातें देखेंगे। आज का टॉपिक जो है वो है मना है। हम अपने जीवन को जब तक डिसिप्लिन, अनुशासन से नहीं बांधते कि ये चीज मुझे करनी ही नहीं है, क्रॉस, तब तक स्थिरता नहीं आती है। किधर भी भटकते रहते हैं, इधर जा रहे, उधर जा रहे, यहां जा रहे, वहां जा रहे। एक नियम, एक अनुशासन, एक रूटीन, उसमें जीवन को सेट कर देना, वो अपने आप रिपीट होते जाएगा। अभी जो चल रहा है उसको कहते हैं ऑटो पायलट मोड। किधर भी जा रहे हैं, इधर जा रहे, उधर जा रहे, यहां जा रहे, वहां जा रहे, नो स्टेबिलिटी, नो स्थिरता। क्या हम करें कि लाइफ एक स्थिर हो जाए? तो ऐसी हम 21 पॉइंट्स देखेंगे। जिनके पास डायरी है और पेन है वो अपनी डायरी पेन निकालेंगे। जब भी कोई क्लास सुनो, दो काम करने एक साथ, पहला काम है सुनना और दूसरा काम है लिखना। ये जो लिखना है ये मेडिटेशन बन जाए, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो ये जो मसल्स है, ये मसल मेमोरी बिल्ड होती है। यहां से लिखते जाओ, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, दिन भर लिखो मैं दुखी हूं, है बहुत खुश पर लिखो दुखी हूं, शाम तक क्या होगा, दुखी होने लगेंगे। ये जो राइटिंग है इसको, इसकी प्रैक्टिस करनी है रोज। पॉइंट्स लिखो, जो भी क्लासेस हो रही है उसमें क्या करना है, थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखने, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं पर कुछ कुछ लिख के रखना। एक सुनना और एक लिखना, सुनना और लिखना, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ तो है जो हम नहीं जानते। चाहे छोटा सा बच्चा आके बैठ के यहां कुछ क्लास कराए, उससे भी हम कितना कुछ सीख सकते हैं। ये लक्ष्य रखो जब तक यहाँ है कि मुझे सबसे सीखना है। इस हॉल में कितने लोग हैं अभी? लगभग 300। तो सोचो मेरे 300 गुरु है। कितने गुरु है? 300। ये सबसे मैं सीखने आया हूं। ये 300 प्लस जो ज्ञान सरोवर में रहते हैं वो दूसरे, इन सब से मुझे सीखना है। यहां जब तक है ये सोचो मैं छोटा सा बच्चा हूं और मैं यहां सीखने आया हूं। एक संत था, सूफी संत हसन, वो शरीर छोड़ रहा था। उसके शिष्यों ने कहा कि आपके गुरु कौन है? उसने कहा मेरे तो बहुत गुरु है पर तीन मुख्य गुरु है। सबसे पहला मेरा गुरु था एक चोर। मैं एक गांव में पहुंचा, रात हो गई थी, सारे दरवाजे बंद थे, एक चोर मिला। मैंने उससे कहा क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूं? चोर ने कहा रहो। और मैं उसके घर एक मास रहा। वो रोज रात को जाता था चोरी करने, सुबह लौट के आता था। एक मास मैंने उसको देखा, सुबह आता था, उसको पूछता था क्या हुआ कुछ आज? वो कहता कुछ नहीं हुआ आज, असफल, पर कल जरूर होगा। उससे मैंने यह सीखा कि चाहे कुछ भी हो गया आशा नहीं छोड़नी है। उस चोर से भी सीखा। दूसरा मेरा एक गुरु है वो है कुत्ता। मैंने देखा एक कुत्ता है, बहुत प्यासा है, धूप है, और वो तालाब के पास आता है, अपना प्रतिबिंब देख के घबराता है, पीछे हटता है, घबराता है, पीछे हटता है, कई बार करता है, पर प्यास इतनी तीव्र है कि आखिरकार छलांगी लगा देता है। मैंने उस कुत्ते से सीखा कि जिस चीज से भय लगता है उसी को करो, छलांग लगा दो। और तीसरा, एक छोटा सा बच्चा मस्जिद जा रहा था दिया लेके। मैंने उस बच्चे से पूछा कहां जा रहे हो? बच्चे ने कहा मस्जिद। उस बच्चे को मैंने हंसी में कहा ये दिए की जो ज्योति है ये कहां से आई? तो उस बच्चे ने क्या कहा होगा? जो दिया होता है ना उसकी जो ज्योत है वो कहां से आई? उस बच्चे ने दिया फूंक दिया और कहा ये जहां चली गई ना वहीं से आई। हर एक हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो कीप द एटीट्यूड ऑफ अ चाइल्ड कि मुझे सबसे सीखना है। जब भी, केवल यही नहीं, चाहे कहीं पर भी हो जीवन में, एक डायरी साथ में रखनी है और उसमें पॉइंट्स नोट करके रखने हैं कि आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ऐसा सीखा। क्योंकि हम भूल जाते हैं, याद थोड़ी रहता है। यहां से जाओगे सब भूल जाएगा, यहां का कौन सी बातें याद आएगी? जो बहुत गहरे में उतर गई, एकदम डीप में चली गई। हमें याद क्या क्या रहता है? शब्द याद नहीं रहते, पिक्चर्स याद रहते हैं। क्या याद रहता है? पिक्चर्स। हमें क्या याद रहता है? स्टोरीज याद रहती है। हमें क्या याद रहता है? जो हटके है, थोड़ा सा अलग सा है, रेडिकुलस, वो याद रहता है। हमें याद क्या रहता है? शॉक वाली कंडीशन, जैसे सबके सामने हमारा किसी ने अपमान कर दिया, वो भूलता है क्या? नहीं, क्योंकि इमोशंस जुड़े हुए उसमें। जो शॉकिंग है वो याद रहता है। और यदि हम कोई क्लास सुन रहे, जैसे आप यहां पर एक डॉक्टर है, वो डायबिटीज के बारे में बता रहा है सबको, सब सुन रहे डायबिटीज के बारे में, उसमें से किसी को भी डायबिटीज नहीं है तो उनका अटेंशन, कितने अटेंशन से सुनेंगे वो? दे विल नॉट लिसन। परंतु किसी का अभी अभी शुगर पता चला, सुबह ही रिपोर्ट आया 400। जैसे अभी एक विदेशी भाई को हमने अभी जस्ट 5 बजे एडमिट करके आए, उसका 500 शुगर था, आईसीयू में अभी। तो जिसको डिटेक्ट हुआ है कि मुझे 400 शुगर है और वो उस डायबिटीज के क्लास में बैठा है, तो वो कैसे सुनेगा? एकदम अटेंशन से, क्योंकि उसे लगेगा ये तो मेरे लिए है। उसी तरह वो चीजें याद रहती है जहां शॉक है, जहां स्टोरी है, जहां विजुअलाइजेशन है, केवल शब्द है, एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, वो याद नहीं रहता है। इसलिए अपनी डायरी जो है उसको कोई भी, कुछ भी, कहां पर भी हेडिंग लिखो, डायग्राम्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स, शेप चार्ट्स, उसके अंदर वो डालो पॉइंट्स, ताकि वो याद रहे क्योंकि ये सब क्या है, ज्ञान है, और ज्ञान एब्स्ट्रैक्ट याद नहीं रहता है। उसको जब तक पिक्चर में कन्वर्ट नहीं करते वो याद नहीं रहेगा, जब तक उसको स्टोरी में कन्वर्ट नहीं करते वो याद नहीं रहेगा, जब तक उसमें इमोशनली हम इन्वॉल्व नहीं है वो याद नहीं रहेगा। वही चीजें याद रहती है हमको जो इमोशनली हम इन्वॉल्व है। बच्चों की किताबें देखिए क्या होता है उसमें, पिक्चर्स, कलर सब होता है ना, वो क्यों, याद रखने के लिए। और ये सारी जो चीजें है वो याद रखने के लिए ही तो है, ताकि हम गिर ना जाए, संभले जीवन में, नहीं तो विफॉल विस्मृति के कारण। विस्मृति सबसे बड़ी गरीबी है, ऑब्लिवियन इज द ग्रेटेस्ट पावर्टी कहा जाता है। तो हम इस क्लास में कुछ बातें अब देखेंगे। सबसे पहली बात, आराम मना है। गीत में सुना, यदि किसी को वेट लॉस करना है तो क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी ना, जिम, एक्सरसाइज, पसीना बहाना पड़ता है। आराम से अचानक सहज कुछ नहीं मिलता है। जितना हमारा जीवन कंफर्ट जोन के अंदर है ग्रोथ नहीं होती है, जैसे ही कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हैं ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो अपने दिनचर्या को देखो, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, उसमें एक्सरसाइज ये कुछ है या बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, वॉकिंग है, सोचो यहां बैठकर जब तक यहां है, परसों जा रहे हैं ना, इस पीरियड में वहां क्या करना है इसकी प्लानिंग करते जाओ रोज, बैठे बैठे, अभी बैठे बैठे ही वहां का दिनचर्या याद करो, मैं कितने बजे उठता हूं, क्या करता हूं, कहां जाता हूं, कहां करना है, कौन सी मिसिंग चीजें है, मिसिंग लिंक्स। जैसे हमारे एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, कार्डियक सर्जन थे, उन्होंने इतनी सारी सर्जरीज की लाइफ में, और एज अ मोस्ट सक्सेसफुल कार्डियक सर्जन। अब उनका रिटायरमेंट था, हम जब छोटे थे मतलब MBBS कर रहे थे तब उनका रिटायरमेंट, और उनका फेयरवेल स्पीच हुआ, उस फेयरवेल स्पीच में वो रोने लगे। तो लोगों को लगा कोई नहीं, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसे थोड़ी ना आप हॉस्पिटल छोड़ के जा रहे हैं, आप आते रहना। उन्होंने कहा मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूं, मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था, म्यूजिशियन बनना था, ये जबरदस्ती बन गया। वो एक इंटरेस्ट था जो छूट गया, वो करना था, पर इतनी बातें आ गई जीवन की दूसरी 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 कि वो रही गया। वो देखो कि हमारा कौन सा इंटरेस्ट था, आर्ट्स, पेंटिंग, एनीथिंग, गार्डनिंग, या कोई खेल, कोई गेम, कोई स्पोर्ट, समथिंग जो मिसिंग रह गया है, वो जब तक फुलफिल नहीं होगा जीवन में बेचैनी रहेगी। बाकी सब मिल गया, पैसा मिल गया, सब मिल गया, जॉब मिल गया, पर वो जो एक करना था ना, कोई भाषा सीखनी थी वो नहीं सीखी अभी तक, कोई आर्ट, कोई स्किल, फाइंड दैट। तो सबसे पहला नियम क्या है, आराम मना है, अपनी दिनचर्या को अनुशासन, डिसिप्लिन में ढालना है, कि मुझे एक नई मेंटल रिवायरिंग करनी है। सारा खेल यहां है रिवायरिंग, एक न्यू कंडीशनिंग। अभी हम इस कंडीशनिंग में है, इतने बजे उठते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, अपने आप होते हैं, हम कुछ नहीं करते। वैसा एक नई कंडीशनिंग क्रिएट करनी है। इसके लिए दो चीजों की हेल्प लेनी है, एक है विजुअलाइजेशन और एक अफर्मेशन। विजुअलाइजेशन अर्थात मन से देखना, जो बनना है वो पहले ही देख लेना। जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि हमारा जो फर्स्ट MBBS का दिन था, हमारे कॉलेज के जो डीन थे उनका लास्ट डे था, डॉक्टर आईचित, उनका भाषण चालू था, और उन्होंने भाषण में कहा 1960s में मैं इस कॉलेज में आया था, इस मेडिकल कॉलेज में 1960s में। मेडिकल कॉलेज में उस समय रैगिंग और ये सब बहुत ज्यादा रहता था। उसी समय जिस दिन मेरा फर्स्ट डे था, मैंने ये संकल्प किया था कि मुझे इसी कॉलेज का डीन बनना है। एक फर्स्ट MBBS का लड़का संकल्प कर रहा है, और मैं उसी संकल्प को देखते रहता था, देखते रहता था, देखते रहता था, विजुलाइज करता था, आग से अग्नि में लिखा हुआ देखता था आसमान पे रोज सोते समय, और एक दिन वो बन गए। कैसे हुआ ये, कैसे हुआ? विजुअलाइजेशन से। जॉर्ज वॉशिंगटन थे अमेरिका के, छोटा सा बच्चा था जॉर्ज वॉशिंगटन, उसके पास पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, स्कूल के लिए भी पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। वो तो नौकरी करता था स्कूल में, क्या नौकरी करता था, बेल बजाने की, दो पीरियड्स दो क्लास के बीच में टन टन टन, पर वो बेल बजाते हुए क्या कहता था, आई जॉर्ज वॉशिंगटन आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे, यही रिपीट करते रहता था, वो बन गया। तो जो हम विजुअलाइज करते हैं वो क्या हो जाता है, हो जाता है। उसी तरह हम अगर ये सोचे कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे कमर में दर्द, पीठ में दर्द, मुझे बीमारियां ही बीमारियां है, तो क्या होगा, बीमारियां और ज्यादा आएगी। सो एक है लिखना, एक है विजुअलाइज करना, एक है बोलना, ये तीनों काम एक एक घंटे में कुछ कुछ लिखते रहो, अच्छा अच्छा दिन में जो भी चिट पेपर मिला कुछ तो लिख दो उसमें। दिस इज कॉल्ड एज वन आवरली राइटिंग प्रैक्टिस। एक छोटी सी लाइन, I am healthy, I enjoy health, बस इतना लिख दिया, वो अपने आप यूनिवर्स ही काम करना चालू करेगा। The universe will conspire to make it come true. तो सबसे पहला है आराम को अपने जीवन से हटाना है। ये आराम जो हम कह रहे हैं, थकान जो है ना, ये शरीर की कम होती है, मन की होती है। शरीर नहीं थकता, क्या थकता है, मन थकता है। क्यों थकता है, विचार कर करके कर करके, व्यर्थ के विचार। दूसरा तो देखना है कौन सा टाइम हमारा व्यर्थ की नींद में जा रहा है, नींद वाला टाइम को एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर दो। वॉकिंग कौन कौन करता है, सब करते हैं डेली वॉकिंग और रनिंग, और वॉकिंग से भी ज्यादा रनिंग जो है ना, ये एक मेडिटेशन है। जो व्यक्ति रनिंग करते हैं ना, उन्होंने अनुभव किया होगा, दौड़ते 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 बॉडीलेस हो जाते, पता ही नहीं चलता है उनको ये क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है, उनके पैर जैसे पहिए लगे हैं उसमें, अपने आप दौड़ रहे, थकान नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, ये देखा गया है। तो जितने भी युवा है, दे स्टार्ट रन, स्टार्ट रनिंग, और जो नहीं कर सकते कम से कम वॉकिंग तो कर सकते हैं ना। एक विदेश के लेखक ने लिखा है, मेरे पिताजी के साथ मेरा भयंकर झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हो गया कि रात भर झगड़ा चला, सुबह 4 बज गए। लास्ट में पिताजी ने कहा, एक तो तू इस घर में रहेगा या तो मैं। मैंने कहा, मुझे नहीं रहना तुम्हारे घर में, जाओ, जवान है, यूथ है, नहीं चाहिए तुम्हारा। और वो चला गया घर छोड़कर, पर निकलने के बाद पता चला पैसे ही नहीं है, तो पैदल चलने लगा, चलने लगा, चलने लगा। 5 बज गया, सूर्योदय हुआ, चलता रहा, चलता 5-6 किलोमीटर चला, और 5-6 किलोमीटर चलने चलते चलते उसे क्या पता चला कि गलती तो मेरी है, मुझे माफी मांगना चाहिए पिताजी से। ये उसने लिखा है बेनिफिट्स ऑफ वॉकिंग में। क्या होता है, जैसे हम प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं, माइंड जो क्लोज्ड है ना वो खुल जाता है। इसलिए यहां पर भी सुबह मेडिटेशन कर रहे हैं ना सभी, हाँ, मेडिटेशन के बाद 100% है। जैसे मेडिटेशन होता है उस साइलेंस के बाद थोड़ा टहलो इधर इस कैंपस में, देखो प्रकृति को, देखो चिड़ियों की आवाज सुनो, सूर्योदय को देखो, झाड़ों को देखो, पत्तों को देखो, केवल देखो। बैठ जाओ एक जगह आंखें बंद करके, और जितनी आवाजें सुनाई देती है प्रकृति की, उस आवाजों को सुनो। निसर्ग जो है अनंत है, और आत्मा भी अनंत है, अनंत अनंत की ओर ले जाएगा। इन्फिनिट अट्रैक्ट्स इन्फिनिट। तो सबसे पहला आराम, आराम का जो हमने समय बना के रखा है ना इतना सारा, उसको कम करना है। दूसरा है जो मना है, वो है भटकना, मना है भटकने की आदत किसको किसको है। भटकना केवल स्थूल का भटकना नहीं, कौन सा भटकना, हाँ, शॉर्ट्स, रील्स, क्लिक 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 क्लिक, ये भी तो भटकना ही है। इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। एक कॉन्सेप्ट को समझना है, डोपामिन डंपिंग एंड डोपामिन लोडिंग। डोपामिन एक हार्मोन है हमारे शरीर में, उसका काम है खुशी, वो वादे का हार्मोन है, खुशी का हार्मोन है। एक होता है डोपामिन लेवल, ये है सपोज, ये लाइन है, ये लेवल है उसका। जैसे ही हम कोई शॉर्ट्स देखते हैं, रील देखते हैं, या कोई विकार या कोई एक्साइटमेंट वाली चीज, तो उसका लेवल एकदम बढ़ जाता है, यहां चला जाता है, एक्साइटमेंट टेम्पररी, पर वो वादे वाला हार्मोन है, वो वादे बहुत करता है, बाद में खालीपन आ जाता है, एकदम बेचैनी होती है, पश्चाताप होता है, टाइम वेस्ट हो गया, फिर वो नीचे आ जाता है। उसके बाद में आप जो रूटीन काम करोगे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, पढ़ाई करनी है, मैथ्स पढ़ना है, बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता है, कोई आध्यात्मिक लिटरेचर पढ़ना है उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। इसके लिए जो लोग सुबह सुबह ये सब करना चालू करते हैं, मोबाइल इंटरनेट, उनको दिन भर में फिर खालीपन लगता है, बोर्डम लगता है। भोजन बहुत सुबह सुबह ही बहुत सारा डाल दिया गरिष्ठ, तो फिर दिन में खालीपन लगता है, सूखा सूखा, वो सब पसंद नहीं आता फिर फल बिल। दैट इज कॉल्ड डोपामिन डंपिंग। इसलिए करना क्या है, डोपामिन लोडिंग। व्हाट इज डोपामिन लोडिंग? सुबह उठ के वो काम करने हैं जो हमें सबसे कठिन लगते हैं, जैसे कोई लिटरेचर पढ़ना, कोई किताब पढ़ना, ये कठिन काम है, कुछ नोट्स बनाना, दिस इज डिफिकल्ट वर्क, ये काम करने हैं। डोपामिन डंपिंग, डोपामिन लोडिंग, ये कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये सारा खेल जो है ना, ये डोपामिन का खेल है, एकदम खुशी। जैसे कोई सिगरेट बीड़ी तंबाकू लेते हैं, उनको किसका एडिक्शन है, तंबाकू का, बीड़ी का ना, वो लेने के बाद शरीर में डोपामिन रिलीज होता है, वो तन बदन में सुखद अनुभूति कराता है। वो दारू पीने के बाद उसको, इसलिए दारू जब नहीं मिलती है तो वो मिस दारू को नहीं करता है, किसको करता है, डोपामिन को। बेचैनी होती है, तलब होती है उसकी, विड्रॉल सिम्टम चालू होते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं पेशेंट। सेम एक्ट्स, ये भी एडिक्शन है, वैसे मोबाइल भी एडिक्शन है, वैसे कोई व्यक्ति भी एडिक्शन बन सकता है कि वो चाहिए, कोई टच भी एडिक्शन है, टच इज ऑल्सो एन एडिक्शन। तो ये देखना है कि मुझे किसका एडिक्शन है। तो फर्स्ट आराम, दूसरा भटकना। एक है स्थूल में भी भटकते रहते हैं, आज इस संस्था में जाते हैं, उस संस्था में जाते हैं, सब संस्थाओं में जाते हैं, अध्यात्मों में भी, स्पिरिचुअल मार्केट बाजार, सब गुरुओं के पास जाते हैं, और फिर यहां पे भी आते हैं, कहते हैं ये भी हमारा भी वैसा ही है, सब जगह जाते हैं, यहां आते ही रहते ना लोग, भटकते ही रहते हैं, भटकते ही रहते हैं, भटकते ही रहते हैं। भटकना भी क्या है, एक एडिक्शन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है गीतांजलि, सुना होगा, उस गीतांजलि में एक कविता है जिसमें कवि कहता है, मैं भगवान को चाहता हूं, भगवान को खोजता हूं, जन्म जन्म से भगवान को ढूंढा, सब जगह ढूंढा, और एक दिन अचानक मुझे भगवान के घर का पता मिल गया, वो तारे के पास भगवान का घर है, मैं वहां पहुंचा, सीढ़ियां थी, सीढ़ियां चढ़, सीढ़ियों पे पहुंचने के बाद फिर मेरे मन में आया, ऊपर लिखा है दरवाजे पर भगवान का घर, अगर मैं वहां गया और सही में भगवान निकल गया तो फिर मेरी खोज का क्या होगा, मुझे आदत किसकी पड़ गई है, ढूंढने की। फिर भी मैंने हिम्मत की, पहले तो चप्पल लिए हाथ में लिए कहीं आवाज ना हो, फिर गया ऊपर और फिर दरवाजे पे ठक ठक करने ही वाला था, फिर से विचार आया, अगर वास्तव में भगवान ने दरवाजा खोल दिया देन फिर मेरी सर्च का क्या होगा। इसलिए मैं चुपचाप वैसे ही नीचे आया और अभी भी सब जगह ढूंढ रहा हूं भगवान को और खोज ही रहा हूं, पर मुझे पता है वो वहां है, वो जगह छोड़ के मैं सब जगह ढूंढता हूं कि पता है ये तो वही है, हमारा कहीं ऐसा तो नहीं है, यहां आने के बाद में भी ढूंढते तो नहीं रहेंगे, पता है यहां कुछ तो है, पर डर लगता है, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, ये लोग कुछ तो नहीं करेंगे, हिप्नोटाइज। भटकना। तीसरा चिपकना। क्या मना है, चिपकना। हम किसी व्यक्ति से चिपक जाते हैं, किसी वस्तु से चिपक जाते हैं। किसी व्यक्ति के फोन का इंतजार, मैसेज का इंतजार ही कर रहे हैं, यह है चिपकना। और वो करता ही नहीं। हम प्यार उससे इतना करते हैं, वो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, क्या करे। प्रेम की परिभाषा है कि जिससे हम प्रेम करें उसे मुक्त कर दो। प्रेम, लव इज नॉट पजेसिव। लव ये नहीं है कि हमें फूल अच्छा लगता है तो हम फूल को क्या करें, तोड़ेंगे ना, उसको रहने दो वहीं। दो व्यक्ति जो है ना, अगर प्रेम भी करते हैं तो रियल लव इज डिटैचमेंट। उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग। जो बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं फिर उनको एक दूसरे में क्या दिखाई देते, अवगुण दिखते। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसलिए जो भी रिलेशनशिप्स है उसमें क्या चाहिए, डिटैचमेंट। अगर डिटैचमेंट नहीं है तो क्या होता है, फिर लड़ाइयां होती है, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, छोटी छोटी बातों में लड़ाइयां होती है। एंड दैट्स नॉट लव। लव तो फ्री कर देता है, लव में पजेसिवनेस नहीं है। लव गिव स्पेस टू ब्रीद दो व्यक्तियों को। जैसे पहले भी सुनाया था कभी, शोशीर कोबिता एक बंगाली बुक है रविंद्रनाथ टैगोर का। एक स्त्री है, एक पुरुष है, दोनों को आपस में प्यार है। स्त्री जो है वो अमीर है, पुरुष जो है वो गरीब है। दोनों को बहुत प्यार है, दोनों शादी करना चाहते हैं। वो स्त्री कहती है हाँ शादी तो करेंगे और तुम यहीं रहना, इतना बड़ा हमारा सब कुछ है, पर एक शर्त है मेरी, शादी के बाद हम लोग अलग अलग घर में रहेंगे, तुम उस घर में, मैं इस घर में। वो कहता है अरे व्हाट इज दिस, शादी किस लिए कर रहे फिर। वो कहते मेरी एक ही शर्त है, हम शादी करेंगे पर तुम उधर रहोगे मैं इधर रहूंगी, हाँ बीच में एक झील है, तुम कभी मिल गए तो हम मिलेंगे, हेलो हाय ओम शांति, पर रहेंगे अलग अलग। वो कहता है आखिर क्यों। वो कहती है मेरी यही शर्त है और मेरे तो तुमसे ही प्यार है, अगर हाँ तुम शादी नहीं करना चाहते तो मैं जीवन भर तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो स्त्री कहती है, कहते कमाल है कैसी शादी है ये। वो कहती यही मेरी शर्त है। वो कहता है आखिर क्यों। वो कहती है कि हमारे प्रेम में जो अभी ये जो फ्रेशनेस है ना, जो प्यूरिटी है, वो शायद खत्म हो जाए और मुझे ये प्रेम आखिर तक रखना है। और यहां पर आपने देखा होगा ब्रह्मा कुमारीज में हजारों लाखों भाई बहने हैं गृहस्थी, जो घर में रहते हैं, प्यूरिटी उनके जीवन में है, ब्रह्मचर्य जीवन में है, वो इधर ये इधर, बीच में एक झील और उस झील का नाम है बाबा। बीच में परमात्मा को रख दिया है। डिस्टेंसिंग ये जरूरी है। चिपकना मना है। हम चिपक जाते हैं ना, मनुष्य का स्वभाव है, कोई अच्छा लगता है, किसी का रूप अच्छा लगता है, किसी के गुण अच्छे लगते हैं, किसी की विशेषता अच्छा लगता है, कोई बोलता बहुत अच्छा है, कोई लिखता बहुत अच्छा है, कोई गाता बहुत अच्छा है, किसी का स्वभाव इतना मीठा है कि ऐसा लगता है उसके साथ बातें करते रहो, होता है ना। पर इसमें खतरा है चिपकने में। जहां अटैचमेंट आएगी वहां फिर दर्द होगा, दुख होगा। पकड़ जितनी गहरी उतना दुख गहरा। उसमें क्या आएगा, मेरापन आ जाएगा। जैसे एक माँ है, उसका बेटा स्कूल से आया ही नहीं है, वो 5 बज गए 6 बज गए, स्कूल तो 4 बजे बंद हो गई, वो जाती है ढूंढती है मेरा बेटा कहाँ है, इससे पूछती है उससे पूछती है, फिर एक किसी से पूछती है मेरा बेटा दिखा क्या, वो पूछता है कैसा है तुम्हारा, वो कहता है इतना छोटा है, ये टाई पहन के है स्कूल की ड्रेस में, वो कहते हैं हाँ 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 मैंने देखा अभी उधर हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। वो कहती है क्या एक्सीडेंट, वो भाग के जाती है, लोग भीड़ लगी हुई है और बीच में एक छोटा बच्चा पड़ा हुआ है, खून आ रहा है। वो कहती है हटो 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 और देखती है मेरा नहीं है। क्या हो गया, शांति मिल गई, मेरा नहीं है। पर किसी का तो होगा ना, किसी का तो होगा ना, ये क्या है? डीप अटैचमेंट। इसके लिए जब तक यहां है एक काम करके जाना है, रिलीज। क्या करना है? रिलीज, व्यक्तियों को रिलीज कर दो। बच्चों को जो करना है उनके ऊपर ध्यान रखना है, पर जबरदस्ती नहीं करनी है उनके ऊपर। यूअर चिल्ड्रेन आर नॉट यूअर चिल्ड्रेन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। खलील गिब्रान की कविता है, आपके जो बच्चे हैं वो आपसे हैं पर आपके लिए नहीं है। दे आर फ्रॉम यू बट दे आर नॉट फॉर यू। हम कहते हैं ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, स्ट्रेस टेंशन। कोचिंग क्लासेस हॉस्पिटल में हर मास में हमारे पास एक बच्चा तो आता है सुसाइड, स्ट्रेस। कोचिंग क्लासेस लगा दी माँ बाप ने, लाखों रुपए खर्च किया है और फिर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में बहुत कम मार्क्स मिले हैं। अब उस बच्चे के पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ, पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाएगा? और पेरेंट्स ने सब जगह बता दिया हमारा बेटा इतना होशियार है, ये है। पेरेंट्स को क्या, उसके साथियों को क्या कहेगा, उसके टीचर्स को क्या कहेगा? उसके सामने एक ही ऑप्शन होता है, खत्म कर दो खुद को। दिस इज हैपनिंग। रिलीज देम। अगला डी, डरना मना है। डर क्या है? निर्भय एक शब्द है हिंदी में। निर्भय की परिभाषा डर का अभाव नहीं है। निर्भय अर्थात संपूर्ण भय के साथ छलांग लगाना, विथ ऑल योर फियर्स जंप इन टू द अननोन। दिस इज कॉल्ड फियरलेसनेस। फियरलेसनेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। फियरलेसनेस मतलब, निर्भय मतलब भय नहीं है, ऐसा नहीं। जिसका डर लगता है ना, और ये सारे हमारे अंदर डर बैठा हुआ है, फोबियाज है। हमारे ओपीडी में एक लड़का आता है, उसको ना डर है कि मुझे कैंसर ही हो गया है। अभी उसकी सारी टेस्ट करा ली पर एक छोटा सा काला दाग है, वो कहता है ये कैंसर है। पूरा एक नई पैथी आई है ना अभी, वो पता होगी आपको ना, एक एलोपैथी होता है होम्योपैथी, वैसा एक नई आई है अभी गूगलोपैथी, जिसमें व्यक्ति गूगल में जाके सारा सर्च करता है और फिर डॉक्टर को आके सिखाता है कि मुझे ये है। इसको कहते हैं गूगलोपैथी। तो अभी उसको कितना समझा दिया, सारा टेस्ट करा लिए, फिर भी उसकी मम्मी आके कहती है वो दिन रात उसी के बारे में सोचते रहता है, पूरा अंदर घुस गया उसके अंदर और डर है उसको। ये डर क्या है? इट्स समथिंग भीतर है कहीं, फोबियाज जिसको कहते हैं। इस पे काम करना है, देखना है। जब तक यहां है ना, अपने जीवन को देखो, विच आर द फियर्स, कोई चला ना जाए। और सबसे बड़ा भय कौन सा है जीवन में? कौन सा? डिफीट का भय एक, मृत्यु का और हारने का, और कौन सा भय है? एक भय है जो सबसे बड़ा है, फियर ऑफ द अननोन, अज्ञात का भय। क्या होगा पता नहीं, अज्ञात इज द ग्रेटेस्ट फियर। और फियर जो है ना, ये हमारे मन में है। जैसे एक स्त्री है, वो रात में रोज स्वप्न देखती है कि एक भूत, एक काली छाया उसका पीछा कर रही है, वो भाग रही है, वो काली छाया उसके पीछे, रोज एक ही स्वप्न उठती है, धड़ 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 धड़, डरावना स्वप्न। पर वो स्वप्न वही टूट जाता है रोज, वो भाग रही है काली छाया, और फिर वो एक दिन वो स्वप्न थोड़ा आगे बढ़ जाता है, वो भाग रही है भाग रही है भाग रही है, नीचे चट्टान है, वो गिर जाती है नीचे, वो छाया उसके ऊपर आ जाती है ऐसी भूत। वो उस छाया से पूछती है तुम कौन हो? वो पूछता है मुझे क्या पता, मैं स्वप्न तुम्हारा है, व्हाट आई नो, अर्थात इमेजिनरी, इमेजिनरी फियर्स। तो डरना मना है। अगला ई, ईगो अहंकार की सीढ़ी चढ़ना मना है। जितना व्यक्ति अहंकारी होता है उतनी सफलता उससे दूर जाती है। निरंतर, जैसे आपने मोहम्मद रफी साहब को सुना होगा, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, ये जो है ना गला मेरा, ये उस खुदा का दिया हुआ है, वो चाहता तो किसी और को भी दे सकता था। आई एम जस्ट अ इंस्ट्रूमेंट। ज्ञान सरोवर में हमारे सुदेश दीदी जी है, आप में मिले भी होंगे। उन्होंने एक क्लास में बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि भगवान जो है ना वो टंकी है, और हम सारे जो है यहां जितने सब, हम सब नल है। अगर ये नल कहे कि ये पानी मेरा है, मैं ज्यादा पानी देता हूं, तो पानी कहां से आ रहा है? वो ऊपर से आ रहा है, नल टंकी से पानी आ रहा है। ये तो इस नल का भाग्य है कि उस पानी ने इस नल को चुना। अगर ये नल कहे कि देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूं, मैं कितनी अच्छी सेवा करता हूं, मैं कितने अच्छे कर्म करता हूं, तो ये क्या है? अहंकार, प्राइड है तो फॉल। ये सोचो कि जो हो रहा है वो ईश्वरीय शक्ति द्वारा हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मेरे द्वारा वो शक्ति कर रही है, वो पावर मेरे ऊपर है। तो इसमें क्या होगा, जीवन में हम बहुत आगे जा सकेंगे। नहीं तो ये अहंकार क्या कर देता है, प्रगति को रोक देता है। मैं करता हूं, मैंने किया, ये मेरा है, ये उस, दिस इज डेंजरस। अहंकार जैसे जहर की तरह काम करता है। अगला, फिसलना मना है। कलयुगी काई में फिसलना मना है। फिसल जाते हैं, चल रहे हैं, प्रलोभन में आ गए, फिसल गए। एक पिताजी थे, उन्होंने अपनी एक किडनी अपनी बेटी को दी, उसका डायलिसिस चलता था। वो बेटी पिताजी को छोड़ के किसी और लड़के के साथ में भाग गई। और फिर बाद में फिर पश्चाताप हुआ, क्योंकि उस लड़के ने भी धोखा दे दिया। फिर वापस आई, फिसल जाते हैं। इसलिए हमको जीवन में क्या चाहिए, गाइडेंस। तो आप जहां रहते हैं, जो भी आपका सेवा केंद्र है, अगर रोज नहीं तो बीच बीच में एटलीस्ट गुरुवार रविवार जाओ, बैठो, तो जीवन में स्थिरता आएगी। नहीं तो भटकाने वाले बहुत है, एकदम आकर्षित हो जाता है मन, कोई अच्छा लगने लगता है और फिर धोखा होता है। ये जो फिसलना है इसको रोकना है। अगला, जी गिरना मना है। गिरना मना है अर्थात ये नहीं कि हम गिरे ही ना, परंतु जब भी गिरे वापस उठने का समय कम हो। गिरो फिर उठो, सीखो और आगे बढ़ो। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं कि जो नहीं गिरता है, परंतु दुख या फिर गलती गिरने की नहीं है, पर गिरकर ना उठने की है। गलती रियलाइज हो गई, नाउ वेक अप एंड स्टार्ट वॉकिंग अगेन। एक व्यक्ति ने अपनी जीवन कहानी लिखी है, 5 chapters। चैप्टर नंबर 1, मैं जा रहा था, एक गड्ढा था, मैं गड्ढे में गिर गया। मैंने चिल्लाया, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, जीवन भर उसी गड्ढे में रहा। यह है चैप्टर 1। चैप्टर नंबर 2, मैं जा रहा था, एक गड्ढा था, वही गड्ढा, उसमें मैं गिर गया। मैंने फिर भी चिल्लाया, मेरी गलती नहीं है, परंतु जब पिछली पहली बार गिरा था ना, उसी की एक आदत सी बन गई। तो मैं लंबा समय रहा, पर क्योंकि मैंने कोशिश की निकलने की, पर मैं लंबा समय रहा। चैप्टर नंबर 3, मैं जा रहा था उसी रास्ते से, फिर गिर गया। एक्चुअली मुझे गलती मेरी है, पर आदत हो गई थी ना, 2 बार गिरा तो इसलिए गिरा। चैप्टर नंबर 4, गड्ढा था, मैं जा रहा था, मैं गड्ढे के बाजू से आके निकल गया, गिरा नहीं। चैप्टर नंबर 5, रास्ता ही बदल दिया। चैप्टर नंबर 5 क्या है, उधर से जाना ही नहीं है। अब एक बार गिर गया, एक बार धोखा खा लिया, अब जाना ही नहीं उधर। आप सबने, कितने मनुष्यों से सबने प्यार किया है, एक बार उस भगवान से प्यार करके देखना है। उसका प्यार कैसा है और ये मनुष्यों का प्यार कैसा है, देन कंपेयर, देन सी। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। मनुष्य के का प्यार कैसा है, स्वार्थ, स्वार्थ है उसमें छिपा हुआ। अगला, हिचकिचाना मना है, हेजिटेशन। हम ये आपको नहीं कहेंगे कि यहां जो भी बातें आपको बताई जा रही है वो स्वीकार करो, कुछ भी स्वीकार मत करो, रिजेक्ट एवरीथिंग, अनुभव करो और उसी को स्वीकार करो। डू नॉट एक्सेप्ट बिकॉज यू हैव रेड इट समवेयर। मैं हमने अभी तक जो कुछ बोला सब रिजेक्ट कर दो, अपनी बुद्धि लगाओ और सोचो क्या है ये आत्मा, ये परमात्मा, ये सृष्टि चक्र, सब एक तरफ। यूज योर ओन इंटेलेक्ट एंड जज, देखो ये सत्य है या असत्य है। ओपन माइंड से जो भी सुनाया जाता है यहां से, एब्सोल्युटली ओपन माइंड, और ठीक लगा तो ठीक, नहीं तो छोड़ो, जबरदस्ती तो है नहीं ना। सो बी ओपन माइंडेड, साइंटिफिक माइंडेड एंड ओपन माइंडेड। हेजिटेशंस, हेजिटेशंस को गिरा देना है, और जब हमको अगर विश्वास हो गया कि यही सच्चा है तो फिर सब छोड़ दो और मूव अहेड। यहां आपने देखा होगा ये सारी बहनें, ये सारे भाई, इतने सारे लोग यहां रहते हैं, और ये सब कैसे युवा है, देखा होगा ना, यूथ। क्या ये लोग बाहर जाके कुछ कर नहीं सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। ये सेंटर की बहनों को आपने देखा होगा, कितनी सारी बहनें, इफ दे वॉन्टेड दे कैन गो इन द वर्ल्ड, मैरी, जॉब, बिजनेस, पैसा, सब कुछ कर सकती थी, पर ये सब कुछ छोड़ के यहां आ गए। क्यों, क्यों, कुछ तो इनको मिला होगा ना, समथिंग हायर, देयर मस्ट बी समथिंग। सो थिंक, चर्न। तो हेजिटेशन को हटाना, हिचकिचाना। अगला, इस वनवाह में सवरना सजना मना है, जो भी ब्यूटी है ना, आत्मा की सबसे बड़ी ब्यूटी कौन सी है, प्यूरिटी। ये बाहर की जो ब्यूटी है वो सब क्या है, आर्टिफिशियल। एक बार ट्रेन में विनोबा भावे जी जा रहे थे, एक महिला थी, उसने गजरा लगाया हुआ था, गजरा पता है ना, उसने उन्होंने पूछा ये गजरा तुमको दिखता है क्या, उसने कहा नहीं, तो किस लिए लगाया फिर किस लिए लगाया फिर, आकर्षित करने के लिए ना। एक हमारे पास एक बहुत स्ट्रेंज केस आई थी, एक बहन आई थी एक बार बाहर की, उसने कहा था मुझे फीमेल नहीं रहना है, मुझे सर्जरी करानी है, मुझे मेल बनना है, पीछे ही पड़ गई थी, मुझे एक्सेप्ट ही नहीं है ये शरीर, उसके पीछे पागल थी वो। इसलिए यहां इस विश्वविद्यालय में सबसे पहला पार्ट है, ना हम स्त्री है ना पुरुष, हम कौन है, एक चेतना, एक ऊर्जा, एक शक्ति। क्या क्या कराते हैं लोग, फेसलिफ्ट सर्जरीज और क्या 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 ढेर सारा है संसार में, तो यही है सारा खेल, सौंदर्य के पीछे है, बाहरी सौंदर्य, सब कुछ फिल्में, मैगजीन्स, मीडिया, सब इस शरीर के इर्द गिर्द घूमता है। और वास्तविक सौंदर्य कौन सा है, ये है। ओपीडी में एक पेशेंट, इधर एक कपल आए थे, यहीं रहते हैं आसपास, इधर साइट सीइंग के लिए, अभी अभी शादी हुई, माउंट अबू आए और आसपास ही रहने वाले हैं। फिर वो बहन जो थी जिसके साथ, वो बहन वो सेल्फी लेते लेते नीचे नीचे गई और गिर गई, और गिर गई तो हेड इंजरी हो गई, हॉस्पिटल में लाए, ब्रॉड डेड, शी वॉज डेड। वो जो हस्बैंड था, अभी 10 ही दिन हुए थे शादी को, इतना रोया इतना रोया इतना रोया इतना रोया। वो 8 बजे के आसपास आई पेशेंट, 12 बजे तो वो हॉस्पिटल, आपने देखा होगा या देखोगे, तो सीढ़िया है, वहां बैठ के कंटिन्यूस रो रहा था नॉन स्टॉप, जोर जोर से, जोर जोर से, अथाह प्रेम, उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, इतना नॉन स्टॉप रो रहा था वो, इतना उसको प्यार था अपनी पत्नी से, और वो तो गई वहीं, डेड हो गई, डेथ। फिर बड़ी मुश्किल से उसको लेके गए, एक मास के बाद वो हस्बैंड ओपीडी में आया था, डॉक्टर साहब शादी में जरूर आना, अभी एक मास भी नहीं हुआ है। ऐसे बदलता है प्यार, किससे, शरीर से या चेतना से, किससे? कितनों को हमने देखा है हॉस्पिटल में, ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं, वो वाइफ को डायलिसिस चालू हो गया, उसने छोड़ ही दिया, आता ही नहीं था फिर, वो डेथ हो गई, अभी दूसरी वाइफ है, ब्रेस्ट सर्जरी हो गई, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, छोड़ दिया। तो सजना, ये सवरना, ये सब आउटसाइड है, रियल श्रृंगार कौन सा है? सिंप्लिसिटी, प्यूरिटी। अगला, झुकना। झुकना मना है, झुकना अर्थात परिस्थिति आ गई, झुक गए, किसी ने अपमान कर दिया और टूट गए अंदर से, तो क्या हुआ? झुक गए ना। द मैन नेवर क्राइज। अगला, कांपना। कांपना मना है, गीत में सुना, कब जाना, परिस्थिति आ गई, डर लगना, मेरा क्या होगा। इसलिए इस विश्वविद्यालय में हर एक जिससे भी आप मिलोगे, एक शब्द आप बार बार सुनोगे कि बाबा साथ में है, उसकी छत्र छाया मेरे ऊपर है। ये सब क्या है? वो ईश्वरीय शक्ति है जो चल रही है, मेरे साथ चल रही है, मुझे कुछ नहीं होगा। सारी दुनिया छोड़ दे पर वो मेरे साथ है, सारी दुनिया मुझ पर आरोप लगाए, सारी दुनिया कहे तू झूठा है, फिर भी मुझे पता है कि वो मेरे साथ है और मैं सत्य की तरफ हूं। तो ये एक शक्ति है, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय छत्र छाया, ईश्वरीय विश्वास, निश्चय। हमारे ओपीडी में माताएं आती है, घर में विरोध है, क्या है, कितना संघर्ष है, उसके बाद में भी यहां आते हैं, 6 महीना यहां सेवा करते हैं, ज्ञान सरोवर में 2 महीना, वहां 1 महीना, और उनके पास केवल 200 रुपए है बस। अगर हम उसको कहे उसकी तबीयत खराब है, उसको बुखार है, उसको कहते हो एडमिट हो जाओ, तो कहते हैं ना 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 ना, बाबा के घर में आए बोझ चढ़ेगा। उसको कहते हैं कि एडमिट हो जाओ, वो कहते हैं नहीं, ये पैसे बचा के रखे वापस टिकट के लिए कॉमन बुगी की। ऐसी ऐसी इतनी भावना, इतना प्रेम, जो है मुझे दवाई दे दो बस, एडमिट नहीं करो, 104 बुखार वैसे ही ठीक कर दो। तो ये सब क्या है? वो ईश्वरीय प्रेम है। तो परिस्थितियां आएगी, बीमारियां आएगी, झुकना नहीं है। हमने देखा यहां इस यज्ञ में सारी दादियों को देखा, हमारे दादी जी थे, दादी जानकी जी, एक बार इतना उनको ब्लीडिंग हो रहा था, हम लोग मुंबई में थे, सारी कुछ टेस्ट कराए, किसी रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं आ रहा था, ब्लीडिंग रुकी नहीं रहता, हीमोग्लोबिन 5, फिर लास्ट में डिसीजन लिया जो होगा होगा, वापस लेके आ रहे थे। वापस जब आए अहमदाबाद से, जब पहुंचे थे नीचे शांतिवन, वो जो कार थी उसमें पूरा ब्लड ही ब्लड, ब्लीडिंग हो रहा था पूरा, और 2-4 दिन फिर नीचे थे, और फिर अचानक से रिकवरी चालू हो गई अपने आप ही। वो तो जैसे एक मेडिकल फील्ड के लिए एक चैलेंज ही थे दादी। और 7-8 दिन के बाद आपने डायमंड हॉल देखा है नीचे, वहां बैठ के वापस भाषण चालू, जो कि अभी सोच रहे थे गए हो गया पार्ट पूरा, मिल ही नहीं रहा कारण क्यों ब्लीडिंग हो रहा, इतना ब्लड पे ब्लड दे जा रहे, ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है, इंडोस्कोपिया कराई इतनी सारी, कहीं कुछ नहीं निकल रहा, सुराग ही नहीं मिल रहा है, कहां ब्लीड हो रहा है। तो ये सब ईश्वरीय शक्ति के चमत्कार है, और ये एक नहीं ऐसे असंख्य उदाहरण है यहाँ पर। आप किसी को भी मिलो यहाँ पर, जब तक हो ना यहाँ, जितने लोग मिलते हैं ना उसको बिठा के और पूछो तुम यहाँ क्यों आए, वो एक स्टोरी बताएगा, ब्यूटीफुल स्टोरी, अनुभव युक्त। तो झुकना नहीं है, फिर लिपटना नहीं है, लिपटना नहीं है अर्थात निर्भर हो जाना किसी पर, यहां अर्थ कि तुम नहीं तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, यह बंधन है एक बहुत बड़ा। अगला मुरझाना नहीं, दुखी नहीं हो जाना, असफलता मिल गई तो क्या हुआ, ठीक है वापस कोशिश करो, वापस प्रयत्न करो। हमारे मेडिकल में एक एग्जाम होती है, उसमें एक बहन सात ही अटेम्प्ट होते हैं, उसमें सिक्स टाइम वो फेल हुई, फिर भी उसने सातवां अटेम्प्ट दिया और फिर लास्ट अटेम्प्ट में पास किया उसने। कितना उसमें पेशेंस चाहिए, एंड दैट इज द टफेस्ट एग्जाम इन मेडिकल, टफेस्ट, एमडी वगैरह से भी बहुत ऊंची एग्जाम है वो, पर उसने करके दिखाया आखिर। मुरझाना नहीं, हार हो गई फिर से खड़े हो जाओ। अगला, नींद में नहीं रहना है, जागना है। सोचो यहां आना एक जागरण, एक अलार्म बेल है, यहां किस लिए आए, कुछ तो होने वाला है जीवन में। हमारे अपने जीवन का अनुभव है कि जब हम यहां आए थे हमें यहां का कुछ भी पता नहीं था, पर एक था कि यही सत्य है, दिस इज द फाइनल ट्रुथ, दिस इज द फाइनल स्टेशन। यहां आने से पहले संसार में जितनी संस्थाएं थी ऐसी एक भी संस्था नहीं छोड़ी थी हमने, हर संस्था में गए थे, ऐसी कोई संस्था नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं, ऐसा कोई मठ पंथ, वेस्टर्न ईस्टर्न सारी फिलोसॉफीज, दूसरे धर्म, हिंदुइज्म बुद्धिज्म सिखिज्म इस्लाम चर्च, 3 मास तो चर्च में ही गए थे, हर 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 सब जगह जाके 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 लास्ट 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 दिस वॉज द फाइनल स्टॉप ब्रह्मा कुमारीज। इसके पहले सब 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 ऐसे नहीं कि यहां ये मुझे था कि ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे फाइनल मिल जाए, ऐसी खोज थी। जब हमारी उम्र 21 एज थी, MBBS हो गया, सब कुछ हो गया, पर कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, उसका रिजल्ट आ गया, उधर MD की एडमिशन मिल गई, सब कुछ छोड़ के केवल मुझे उस भगवान की ही खोज थी और वही मुझे चाहिए। सारे परिवार वाले घर वाले सब विरोध, भयंकर विरोध, छोटा मोटा विरोध नहीं, भयंकर विरोध, 100-150 लोग तो समझाने आए थे, कहाँ जा रहा है इधर ही रुक जा वगैरह वगैरह। हम रुके केवल यहां, वो भी ओनली विद दैट फर्स्ट विजिट, क्योंकि ये कुछ तो और है, ये उन संस्थाओं जैसा नहीं है। हम मठों में रहे हैं, सब जगह रहे हैं, मंदिरों में रहे, एस्कॉन रामकृष्ण मिशन चिन्मय मिशन योगा द सत्संग सोसाइटी आर्ट ऑफ लिविंग माता अमृतानंदमय, हर एक संस्था में गए, ऐसी लिस्ट ही बनाई थी 50-60 संस्थाओं की, उसमें लास्ट में ब्रह्मा कुमारीज रखा था क्योंकि यहां बहने ज्यादा थी, उसका हमको डर था कि ये हमको लेंगे कि नहीं लेंगे उस समय। तो दिस इज द फाइनल ट्रुथ, आप भी जो आए हो तो यह नियति का कोई एक प्लान है जिसने आपको यहां लाया है, कोई सुपर प्लान है, जस्ट सरेंडर। अगला, वायदे से मुकरना नहीं है, वायदा आत्मा की शक्ति है, एक प्रण लेके जाना है यहां से जाने से पहले, प्रतिज्ञा में शक्ति होती है। पिघलना नहीं है, पिघलना मना है, हार नहीं माननी है, फिर से चालू करना है। क्यों 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 करना मना है, ये क्यों वो क्यों यो क्यों, यहां पे देखा होगा एक ही है, मैं बिंदु मैं आत्मा, बस फुल स्टॉप, उसका एनालिसिस करना छोड़ दो, हो गया हो गया, बाइगॉन्स भी बाइगॉन्स, फुल स्टॉप स्टॉप, आत्माभिमानी स्थिति। रूठना रूसना मना है, रूठते रहना रूसते रहना, नाराज होते रहना रोते रहना, इसके लिए हम नहीं आए हैं। सिहरना मना है, कपना, उसकी तरह सिहर ना है, थक ना मना है और लास्ट उलझ ना मना है। यहां आए हो तो जो भी उलझने हैं जीवन की उसको दूर से देखो और निकलो उससे बाहर। तो यहां आना एक दैवी संकेत समझना है। तो सभी स्थिर होके बैठेंगे, लास्ट 5 मिनट्स अपने संपूर्ण जीवन को देखेंगे। सभी स्थिर शांत, डायरी पेन पेंसिल रख देंगे और पूरे शरीर को रिलैक्स कर लो। सामने देखेंगे, आंखें खुली, किसी एक बिंदु पर मन को एकाग्र कर लो। मैं एक शुद्ध चेतना हूं, मैं संकल्पवान आत्मा हूं, मेरा यहां आना मेरे जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। जब तक मैं यहां हूं, मौन और एकांत में मुझे स्वयं को ढूंढना है। मैं कौन हूं और क्यों हूं, मैं किसका हूं, किस लिए हूं, मौन एकांत अंतर्मुखता। एक दिव्य शक्ति मुझे यहां ले आई है, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। जीवन में नया कुछ होने वाला है, एक नई दिशा, एक नया जीवन, एक नई सुबह। इस पवित्र प्रांगण में मेरा मन शांत हो रहा है, भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है।
कलयुग काई में फिसल ना मना है, मोह की डालियों में लिपट ना मना है, वायदे से मुकर जाना मना है, भगवान की नजर से छिप ना मना है, देह के दर्पण में खोना मना है, अहंकार चढ़ना मना है। सुन नाही सिहर न मना है जीवन है संग्राम कापना मना है चलते रहना तेरे मार्ग में ठहराओ मना है इस वनवाह में संवरना मना है शोक वाटिका में सजना मना है अर्श से फर्श पर उतरना मना है स्वमान के तख्त से गिरना मना है राही है तू किसी नगर में बसना मना है एकला चलो रे साथी बनाना मना है तू तो शिव संगी खुदा दोस्त बना अस्त्र बन बरसना है सुन ओ नाही थकना मना है मार्ग कठिन है रुकना मना है चल